जय माँ। रूपांतरण की कई स्टेप्स और स्टेजेस हैं और हर व्यक्ति अलग अलग स्टेज में खड़ा है, इस कारण उसको वहाँ से ले जाते हैं भगवान हाथ पकड़ के। इसीलिए इसको किसी हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला में नहीं बांध सकते। पिछली बार हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी, माँ कहती हैं कि भगवान के लिए हमारे जो कंसेप्ट होते हैं जीवन के बारे में, रूल्स होते हैं भगवान के बारे में, कंसेप्ट होते हैं, इन सब का एक टेम्पररी यूटिलिटी होती है। मतलब क्योंकि आप जैसे एक व्यक्ति को सीधा कह दिया जाए भगवान तुम्हारे अंदर है, उसको मालूम भी नहीं भगवान क्या है कौन है, तो वो अगर आप बाहर में मूर्ति नहीं भी बनाओ, विग्रह नहीं भी बनाओ, भारतवर्ष में तो विग्रह की बड़ी सुंदर परंपरा है, तो आप अपने अंदर कोई ना कोई छवि बनाते हो, या तो गुणों के द्वारा या क्वालिटीज़ के कारण द्वारा। तो और ये हम देखते हैं कि जिन्होंने वो म्यूट पर था माइक, तो ये देखो स्टेजेस और स्टेप्स की बात हम कर रहे थे। म्यूट जब माइक होता है तो आपको पहला एक्शन बोलना नहीं होता है, माइक को अनम्यूट करना होता है। तो अलग अलग स्टेप्स पर, अलग अलग स्टेजेस पर रूपांतरण एक प्रोसेस है, एक लंबी प्रोसेस है। ये ऐसी नहीं है कि अभी हम माँ की ओर मुड़े या हमने आश्रम ज्वाइन कर लिया और अगले दिन से लोग आके एक ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट को ढूंढने लगते हैं। ये बरसों की नहीं, डिकेड्स की, जन्मों की एक प्रक्रिया है। और इसीलिए जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, एंड्योरेंस नहीं है, श्रद्धा नहीं है, बहुत ही रेस्टलेस है, इम्पेशेंट है, तत्कालिक रिजल्ट चाहता है, उसके लिए ये योग अभी उपयुक्त नहीं है। ये नहीं कि कभी उपयुक्त नहीं है, लेकिन अभी तो इसके स्टेप्स और स्टेजेस हैं जिसके थ्रू मनुष्य को गुजरना पड़ता है। पहली चीज़ हमको ये समझनी है। दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग ये प्रोसेस है जिसके बारे में ये कहते हैं कि जितना अधिक हम भगवान का काम सक्षमता से करते हैं, भगवान की दृष्टि में, अपनी दृष्टि में नहीं, अपनी दृष्टि में तो हर व्यक्ति समझता है कि मैं सक्षम, उतना अधिक आपको भगवान काम देते हैं। एक यहाँ पे नवजात जी कहते थे बड़ी सुंदर बात कि अगर तुमने ये जैसे हाई जंप होता है तो आपने अगर 4 फीट की क्रॉस कर ली तो भगवान ये नहीं कहते अच्छा बैठ जाओ बहुत अच्छा काम किया तुमने, फिर वो 4.6 बढ़ा दिया जाता है, वो बार आपने क्रॉस किया 5। तो ये रूपांतरण भी ऐसे से चलता है। और वो ये नहीं कि एक झटके में अचानक हमसे ये कल्पना की जाती है कि हम बिल्कुल पूरी तरह कंप्लीट सरेंडर। श्री अरविंद देख जी कहते हैं यदि पूर्ण सरेंडर, पूर्ण समर्पण, पूर्ण निष्ठा, यदि ये शुरू से डिमांड हो तो कोई भी साधक, सबल से सबल साधक ये योग नहीं कर पाएगा। और इसीलिए लाइफ में चैलेंजेस आते हैं और हर एक चैलेंज से हम जैसे जैसे गुजरते हैं वैसे वैसे हमारी शक्ति क्षमता बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी क्षमता बढ़ती है वैसे वैसे हमारा कार्य बढ़ता है, क्षेत्र बढ़ता है और अधिक अधिक हम भगवान से जुड़ते चले जाते हैं। इसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि श्री अरविंद बार बार उसमें भी कहते हैं भवानी मंदिर में, वो कहते हैं कि हमको पहली चीज़ शक्ति का अर्जन करना है। तो शक्ति का अर्जन कैसे करेंगे? अगर आप किसी से भी पूछें शक्ति, शक्ति से लोग समझते हैं कि उठा तलवार घुमा किसी को हम लड़ पड़ेंगे शक्ति, लेकिन जो पहली शक्ति हमको अर्जन करनी पड़ती है वो शक्ति है सहन शक्ति। और हम देखते हैं कि ये 3 स्टेजेस ऑफ स्कूलिंग है नेचर के, श्री अरविंद की बात करते हैं। फर्स्ट कैमल मैन, जहाँ हमको केवल एंड्योर करना आता है, फिर होता है लायन मैन जहाँ आप एक्टिव होते हो, फिर आता है चाइल्ड विच इज प्लेइंग फॉर एवर। ये मैंने एक बहुत सुंदर दृष्टांत पढ़ा था एक भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु की जीवनी बचपन में, आई रिमेम्बर एज ए चाइल्ड, पूरी किताब मुझे केवल एक दृष्टांत याद है, कुछ भी याद नहीं है। तो वो दृष्टांत ऐसा था कि सुखदेव एक बार वो ट्रेन में जा रहे थे तो अच्छा खासा उनका बिल था और रिवॉल्यूशनरी थे, भारत के संग्राम के लिए लड़ रहे हैं, और उनको एक कुछ गोरे ब्रिटिश सोल्जर्स, उन्होंने उनको पीटना शुरू किया, नाना प्रकार की बातें कहना शुरू किया, पीटना शुरू किया। तो ये चुपचाप बैठे रहे और सब लोगों को आश्चर्य हो रहा है ये तो इनको आराम से पीट सकते हैं, ये इनके अंदर तो इतना उबाल है क्यों नहीं कर रहे हैं। तो जब ये सब हो गया लोगों ने पूछा तुमने उनको पीटा क्यों नहीं, कहते हैं देखो अगर मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं आएगी तो कल, यदि आज नहीं तो कल, मैं तो जान हथेली लेके घूम रहा हूँ और अगर मुझे पकड़ा गया और इन्होंने मुझे वहाँ पर जब पिटाई की तो मैं तो टूट जाऊंगा। तो कभी कभी शक्ति अर्जन करने के लिए एक्सेप्टेंस की एक फेज होती है। माता जी एक जगह बड़े सुंदर ढंग से कहती हैं, फर्स्ट एक्सेप्टेंस की पावर, तब चेंज की पावर। यदि हमारे अंदर चीज़ों को एक्सेप्ट करने की शक्ति नहीं है तो हम उसमें परिवर्तन लाने की, चेंज लाने की भी शक्ति नहीं आएगी। इसको माने पूरा उनका एक एजेंडा में कन्वर्सेशन है, जहाँ कहती है एक्सेप्टेंस। सो योग में इक्वानिमिटी, जहाँ सारे घात संघात आघात आप सहते हो लेकिन सह के आप उफ भी नहीं करते हो, उसमें समर्पण का भी भाव है, एंड्योरेंस भी है, तब आपके अंदर वह शक्ति का, ये शक्ति का अर्जन है। आप हर बात पे विचलित होकर अपने आप को थ्रो आउट नहीं कर रहे हो, तब एक समय आता है जब वो ऊर्जा इतनी संग्रहित हो जाती है, क्योंकि ये भी एक प्रकार की शक्ति है, मैडोना ऑफ सफरिंग, मदर ऑफ ग्रीफ डिवाइन। तब उसके बाद मैडोना ऑफ लव, मैडोना ऑफ स्ट्रेंथ, एंड देन मैडोना ऑफ नॉलेज, मैडोना ऑफ लाइट। तो ये प्रोसेस है माता जी की। तीन चार प्रार्थनाएं आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बाद एक नई प्रोसेस शुरू होगी, उसको थोड़ा सस्पेंस में रहने दें, कि बहुत इंटरेस्टिंग है। माँ यहाँ से जाती हैं तो क्या अनुभव करती हैं। January 17, 1915 माँ कह रही हैं, नाउ ओ लॉर्ड थिंग्स हैव चेंज्ड, द टाइम ऑफ रेस्ट एंड प्रिपरेशन इज ओवर। ये हर एक साधक के जीवन में आता है, एक अब एक अब मेरे से जुड़ी हुई जो कहानियां मुझे वो अधिक पता है कि एक बार शुरू में जब मार्बलिंग सेक्शन में काम मिला था तो कुछ काम वहाँ मतलब था नहीं, ऐसे नहीं काम नहीं है, लेकिन अब एक एक्टिव बंदा वहाँ बैठ गया है 2 घंटे, कोई आएगा खरीदने तो आपको बिल बनाना है, थोड़ा साड़ी बेचनी है, साड़ी दिखानी है रंगों से, बट कभी कभी ऐसा था कोई नहीं आता था, और वो स्ट्रिक्टली कहते नहीं नहीं पढ़ना उड़ना नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, मोबाइल फ़ोन थे नहीं, तो आप ऊपर नीचे टहल रहे हो। तो एक बात मेरे दिमाग में आती थी बार बार, प्रवृत्ति से निवृत्ति। मुझे लगता था ट्रेनिंग हो रही है, प्रवृत्ति से निवृत्ति। और एक बार किसी की घटना मुझे मालूम है, वो अभी भी जीवित हैं इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आश्रम में किसी कारण से उनको एक डिपार्टमेंट से कह दिया गया कि नहीं आप अभी यहाँ नहीं आएंगे। तो मुझे शेयर कर रहे थे, बहुत ही पुराने हैं, शेयरविंद के समय से बच्चे थे उस समय। तो कहते एक साल के लिए मैंने कुछ नहीं किया, मैं घर में था। तो उस समय मैंने कहा मेरे पास एक बहुत सुंदर अवसर है। तो क्या अवसर है? मैं शेरविंद माता जी को फिर से पढ़ूं। अब देखिए उन्होंने ये नहीं लेमेंट किया, कंप्लेंट किया, मेरे साथ अनुचित व्यवहार हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, और एक दृष्टि से देखें तो गलत हुआ, लेकिन उन्होंने ये कंप्लेंट नहीं किया। उन्होंने उसको माता जी की ग्रेस के रूप में लिया और एक साल उन्होंने पढ़ा। उसके बाद उनको एक ऐसा काम दिया गया जो उनके पहले काम से बेटर था, और वो सिचुएशन ऐसी बन गई, ये नहीं कि कोई उनको उनको लोगों को बुला के उनको रिक्वेस्ट करके वो काम देना पड़ा। तो प्रिपरेशन का पीरियड होता है, जब हमें कोई काम नहीं है। एक बहुत सुंदर पंक्ति है श्री अरविंद की, एक पोयम है टू आर ऑन हर बर्थडे, उसमें श्री अरविंद कहते हैं, ही हु टू सम गिव्स विक्ट्री जॉय एंड गुड, टू सम गिव्स रेस्ट। यही बात हम लोगों ने डिलाइट ऑफ वर्क्स में श्री अरविंद कहते हैं कि सोट कभी टूट जाती है, टूट के बिखर जाती है। तो हमें यह समझना चाहिए कि यह समय हमारे अंदर एसिमिलेशन का पीरियड है, और उस समय हमको उस रेस्ट को भी प्रिपरेशन के रूप में यूज करना चाहिए। तो यहां माँ कह रही है, रेस्ट एंड प्रिपरेशन का जो समय था वो हो चुका है, क्योंकि अब नई चेतना आ गई है और कार्य कर रही है, और अब उनको उसमें पूरी तरह पार्टिसिपेट करना है। Thou hast willed that from a passive and contemplative I become an active and realizing servant। और हम लोग जानते हैं कि ये एक लंबे समय तक माँ के अंदर जो प्रवृत्ति थी वो वास्तव में निवृत्ति की थी। एक लंबे समय तक, यहाँ तक कि आने के बाद भी, 20 के बाद कुछ कुछ लोगों से इंटरेक्ट करना माने शुरू किया था, लेकिन ये नहीं कि वो सीधा भाग करके दौड़ करके काम में लगे, ये नहीं कि उन्होंने अपने को बंद किया हुआ था, ऐसा नहीं। जब भी श्री अरविंद की इवनिंग टॉक्स माँ होती थी, बैठती थी, सब सफाई वगैरह करना, ये सब बाय एग्जांपल, उनके सारे अकाउंट्स को, आर्य के अकाउंट को संभालना, या उनके भोजन की व्यवस्था, ये सब माँ देखती थी, लेकिन वो कभी स्वयं को आगे नहीं रखती थी कि मैं ये काम। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि कई बार हम जब वाइटल इम्पेशंस में कोई काम लेते हैं, करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग कहीं ना कहीं एक अहंकार और प्राणिक आवेग में वो काम कर रहे हैं। लेकिन माँ कहती हैं कि अब उनको ये ज्ञान प्रतीत हो गया है कि अब उनको कंटेम्पलेशन का समय चला गया है और अब उनको रियलाइज करना है। Thou hast willed that the joyful acceptance be transformed into a joyful combat. अब ये वो समय है जब फर्स्ट वर्ल्ड वार प्रारंभ हो गया है, तो जॉयफुल कॉम्बैट की हर लेवल पर उनको कॉम्बैट में उतरना ही है। दैट इन ए कॉन्स्टेंट एंड हीरोइक एफर्ट अगेंस्ट ऑल दैट इन द वर्ल्ड अपोजेज द एकम्प्लिशमेंट ऑफ दाई लॉ इन इट्स प्योरेस्ट एंड हाइएस्ट प्रेजेंट एक्सप्रेशन आई रिकवर द सेम पीसफुल एंड इम्यूटेबल पॉइज विच वन पजेसेज इन ए सरेंडर टू दाई लॉ एज इट इज वर्किंग इट सेल्फ आउट एट द मोमेंट। भगवान की जो कार्य प्रणाली है वो किसी फॉर्मेट में नहीं है, ये हम लोगों ने, वो सब फॉर्मेट के परे हैं और किसी भी फॉर्मेट में उतर के वो काम कर सकते हैं। तो वो पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा वाइडनेस और रिजुता, और हमको कोई भी मेंटल रिजिडिटी या कोई भी प्रकार की प्राणिक उसके अंदर एक बहुत सारे बंधन, इवन एक जगह माता जी कहती हैं कि मॉरल क्वाम्स, कॉन्सेंटियसनेस, ये सारी चीज़ें बाधक होती हैं भगवान के काम में। तो अब माँ कह रही हैं कि जब हम सरेंडर करके काम करते हैं तो अंदर में एक शांति होती है। उस सरेंडर का लक्षण ही यही है कि हमारे अंदर शांति है। अगर शांति नहीं है तो कहीं ना कहीं सरेंडर की कमी है। कई बार लोग कहते भी हैं कि मैंने तो माँ को अपना सब कुछ सरेंडर कर दिया, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। सरेंडर बाय नेचर इम्प्लाइज कि इसके बाद ये प्रश्न नहीं रहेगा। अब सोचिए आप फिजिकली माँ प्रेजेंट हैं और आपने माता जी को दे दिया कि माँ मेरी ये समस्या है, आप इसको देख लो। माँ ने सिर से, नॉड से, स्माइल से, आंखों से या केवल श्रवण मात्र से उसको स्वीकार कर लिया। अब अगर आप हर दो दिन बाद जाकर के माता जी को कह रहे हैं, माता जी वो मेरी प्रॉब्लम आपको याद है, क्या हुआ, तो कहाँ है ये फेथ का कहीं ना कहीं अभाव है। और वो स्टोरी मैंने पहले भी बात की है कि छोट नारायण जी जब यहाँ पर आए थे रहने, केवल एक टेम्पररी स्टे के लिए गोलकुंड में 15 दिन रुके थे, और वो रोज रात को दुस्वप्न देखे, भयानक राक्षस बैठ के उनके छाती के ऊपर खून पी रहे हैं। अब ऐसा दृश्य कोई देखेगा तो क्या हाल होगी। तो जाके माता जी को सुबह बोलते थे, माता जी बोलते थे कि बस देखती थी मेरी और कुछ कहती नहीं थी। और वो रोज जाके बोले, माता जी रोज देखे कुछ बोले नहीं। कहते हैं कुछ दिनों बाद माँ ने कहा, इफ यू आर सो मच अफ्रेड यू कैनॉट डू दिस योगा। अब वो कहते हैं अब तुम्हें और भी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि किधर जाऊं, अगर मैं माँ को ना बोलूं तो मेरी तो हालत वैसी खराब हो रही है, और माँ ने तो ऊपर से कह दिया भय लगेगा तो योग नहीं कर सकते हो। तो अब वो बेचारे परेशान, कहते फिर हमने कहा कोई बात नहीं, अब जगत जननी का उनका तो तरीका था ये बोलने का, तो वो सब कुछ ठीक है, आई एम एक्सेप्टिंग इट। फिर जब वो उनके पूरे, क्योंकि वो शरीर के अंदर जो भी प्रतिक्रियाएं हो रही थी, एक बहुत बड़ा घाव हो गया, तो फिर माँ के पास डरते डरते, माँ ये तो बता ही दो कि मेरे घाव हो गया। डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इट वॉज मदर्स वे टू आपके अंदर भय हटाने का। भय हटाने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका होता है फ्लडिंग, साइकोलॉजिस्ट को यूज करते हैं। फ्लडिंग क्या है कि आपको वो चीज इतनी अधिक मात्रा में अचानक फेस करनी पड़ती है कि आपके अंदर से वो भय सदा सदा के लिए चला जाता है। तो अब उनके लिए माता जी ने ये उपाय चुना था, क्योंकि उनको एक कार्य करना था, सुंदर कार्य करना था। तो फ्लडिंग, सब तरफ से जो कुछ उनकी हो रही थी, राक्षस असुर सारे खून पी रहे, फिर ऊपर से एक कार्बंकल हो गया। तो माँ कहते हैं कि माँ ने देखा उसकी ओर और उनकी दृष्टि ने ऐसे पियर्स किया कि मेरे पूरे शरीर में वेदना, जलन प्रारंभ हो गई, पूरा शरीर जैसे आग में जलने लगा। वो तो ठीक हो गया लेकिन पूरा शरीर जल रहा है। अब नई प्रॉब्लम शुरू हो गई कि ये जलन को मैं कैसे सहूं। तो फिर वो माँ को, फिर कुछ दिन बाद उन्होंने कहा माँ पूरा शरीर जल रहा है। माँ कहती है गो बैक, अब सोच ओके, अब माँ ने कह दिया गो बैक तो गो बैक। तो उन्होंने बोली, लेकिन अरेंजमेंट सारा माँ का था, टिकट कोई साथ ही मिल गया, क्योंकि इससे मैं कैसे जाता। पर वो बताते हैं मैं चेन्नई पहुंचा, मेरी 50% प्रॉब्लम दूर। मैं जब कलकत्ता पहुंचा तो मेरी 75% दूर। गांव पहुंचा 100% चली गई। क्योंकि ये सहन क्यों करना पड़ता है? ये ताप है भगवान का। सूरज की गर्मी जो हमको शीतकाल में ऊष्मा देती है, वही गर्मी का ताप हमको नष्ट। इसीलिए जो भय भंजन है, वो बार बार ये बात बताते थे छोट नारायण जी, जो भय भंजन है, भंजन है, उनका दर्शन बड़ा भयानक होता है। ये कठोपनिषद में है कि तू उनको देखेगा ना चिकेता, जिनके भोजन में हीरो और सेजेस भोजन में परोसा हुआ खाना है, और मैं मृत्यु यम स्वयं उनके खाने में मसाला हूं, उनको देखेगा। देखिए अर्जुन का क्या हाल होता है जब वो श्री कृष्ण का विश्व रूप देखते हैं, कालोस्मी भव। तो ये एक स्टेज होती है जब हमको सब कुछ समर्पण करके स्वीकार करना होता है। उसमें जो भी है, सहन शक्ति, इक्वानिमिटी श्री अरविंद कहते हैं, एंड्योरेंस, माता जी बार बार स्मरण कराती हैं, बिना विचलित हुए कैसे भी दृश्य आए, बहुत कुछ आता है, सब चीज को एंड्योर करना। तो माँ इसकी बात करती हैं कि चूंकि उन्होंने सरेंडर कर दिया है, अब वो कहाँ जा रही है, रण क्षेत्र में कॉम्बैट प्रारंभ हो गई है, कई लेवल्स पे कॉम्बैट होगी, और वो उस रण क्षेत्र में कैसे आम ढोके जा रही है, सरेंडर की शक्ति के द्वारा। और सरेंडर का साइन क्या होता है, शांति। अगर सच में कोई समर्पित कर चुका है तो उसके हृदय में शांति होगी, अगर शांति नहीं है तो सरेंडर का अभाव है, सिंसेरिटी का अभाव है। तो व्यक्ति को देखना है कि मेरे अंदर कौन सी चीज है जो इनसिंसियर है, कौन सी चीज जो समर्पित नहीं है। तो माँ कह रही है कि सरेंडर के साथ वो शांति होती है। अब एक दैट इज टू से विदाउट एंटरिंग इनटू ए डायरेक्ट स्ट्रगल विद ऑल दैट इज अपोज्ड टू इट, ड्रॉइंग द बेस्ट आउट ऑफ एवरी सर्कमस्टेंस एंड एक्टिंग बाय कंटेजियन एग्जाम्पल एंड स्लो इन्फ्यूजन। अभी वो गई नहीं है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्षेत्र में, पूरे एकदम डायरेक्ट कॉम्बैट वो ले रही थी अपने शरीर पर ये सब। लेकिन अब वो कहती हैं कि दो उपाय होते हैं काम करने के। एक उपाय होता है आप डायरेक्ट स्ट्रगल में उतर जाते हो, दूसरा आप एक एग्जाम्पल सेट करते हो, सीरेनिटी का एग्जाम्पल, आप वो परफेक्ट जॉय का एग्जाम्पल, स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल। और वो भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो हम देखते हैं श्री अरविंद का, वो एग्जाम्पल तो सच में अद्भुत लगता है, प्रेरणादायक, कि हम लोग छोटे मोटे मौसम बदलने से परेशान हो जाते हैं, साइक्लोन आ रहा है, खिड़की खुली है, श्री अरविंद बैठ के टेबल पर लिख रहे हैं और एक बूंद पानी की नहीं आ रही है अंदर में। माता जी बताती हैं जब वो खिड़की बंद करने जाती हैं, तो वो एक एग्जाम्पल है। और इस तरह क्या होता है, कंटेजियन, ये शांति कंटेजियन के थ्रू लोगों के अंदर जाती है। ये भी एक कंटेजियन है, एक कंटेजियन होता है भय का और एक कंटेजियन होता है शांति का। तो माता जी कह रही हैं इस तरह से अभी मुझे कार्य करना है। इन ए कॉम्बैट पार्शियल एंड लिमिटेड बट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्रेट टेरेस्ट्रियल स्ट्रगल। जैसे महाभारत के समय में एक युद्ध तो हो रहा था भारत भूमि के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव था। रिप्रेजेंटेटिव के सेंस में दो प्रकार की मानव आदर्श हम कह लें, दो प्रकार की फोर्सेस जो दोनों तरफ खड़ी थी। एक जो भगवान के कृत्य का, भगवान के कर्म का, भगवान के उद्घाटन का अपोज कर रही थी, और दूसरी जो उसकी साथ खड़ी थी। यही पूरी, तो कई बार लोग कहते हैं कि आई होप भगवान मेरे साथ है, ये नहीं प्रश्न करना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए आई होप मैं भगवान के साथ हूँ। क्योंकि वो जिस पलड़े में खड़े हैं, उन्होंने जिस तरफ अपनी शक्ति को रखा है, उधर हमको खड़े होना चाहिए। तो यहाँ पर माँ कहती हैं कि इट इज़ ए सिंबल ऑफ द ग्रेट टेरेस्ट्रियल स्ट्रगल। आश्रम के बारे में, भारतवर्ष के बारे में बड़ी सुंदर राइटिंग है, माता जी ने भी कहा है, नलिनीता की एक राइटिंग है, द आश्रम इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो कहते हैं कि आश्रम के अंदर जो स्ट्रगल है लोगों की और जो कठिनाइयाँ हैं, वो वास्तव में टेरेस्ट्रियल स्ट्रगल का एक सिम्बॉलिक फॉर्म है। मान लीजिए आपको कोई पसंद नहीं आया, आपके डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो आप उससे कैसे डील करोगे, ये एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, ये आप कंटेजियन की तरह से भारतवर्ष में और वर्ल्ड में ये रेप्लिकेट होगा। एक इस प्रकार की चीज है, आपके नेचर के अंदर कोई दुष्प्रवृत्ति जगी, आप उससे कैसे डील करोगे, उससे आप हार जाते हो, हार मान लेते हो, या आप अपने अंदर भगवान की कृपा से और शक्ति ऊर्जा का संचय करके आप उस पर विजय पाते हो। तो माँ कहती हैं तुम्हारी छोटी छोटी विजय संसार के विजय का कारण बनेगी। एक वर्ड उन्होंने यूज किया है, विन योर लिटिल विक्ट्रीज, तो वो विक्ट्री फिर कंटेजियन के रूप में पूरे संसार में फैलती है। तो अब ये अपनी अपनी सोच है, पर मेरा अपना ये एक इंसाइट जो आई थी जब मैंने श्री अरविंद सिगार पीते थे पहले, अब वो इन सब चीज़ों के परे थे, वो तो किसी मोल्ड में नहीं है। लेकिन माता जी एक जगह कहती हैं उनको, ये जो लड़के हैं ना, ये नहीं समझ पा रहे हैं आपकी चेतना आपको तो कोई असर नहीं हो रहा है, ये लोग जो हैं इसको एक रोल मॉडल के रूप में ले रहे हैं। तो शेरविन कहते, ओह इज इट, पूरा ड्रॉप हो गया। अब ये घटना ऑब्वियसली 1930-35 इस समय की बात होगी। अब कालांतर में आप देखिए, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आज के समय, अब अगर आप सिगरेट पीते हो या स्मोक करते हो, आपको एक अलग स्मोकर जोन में जाना है। इवन लीगली आप पब्लिक स्मोकिंग नहीं कर सकते हो अगर कोई आपके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज करता है। तो ये जो कृत्य होते हैं, एक बड़ी सुंदर लाइन है सावित्री में, ही लेफ्ट द फुटप्रिंट्स ऑफ ए गॉड। तो उनके जो कर्म होते हैं भगवान के, वो कई बार एक स्प्रेड करते हैं 1 to 2 to 3 to 4 आश्रम में। कुछ लोगों ने ऐसा निर्णय लिया, आश्रम में कुछ लड़कियों ने वो अपनी ट्रेडिशनल वेशभूषा की जगह स्पोर्ट्स किट पहना और फिजिकल उसमें लग गई। आश्रम में पहली बार हम देखते हैं ये जो फेमिनिज्म की ट्रू क्रांति हुई है, स्पिरिचुअल फेमिनिज्म, ये शब्द माता जी ने इसका उपयोग किया है। स्पिरिचुअल फेमिनिज्म क्या है कि लड़कियां हर डिपार्टमेंट हेड भी हैं, लड़कियां सारे काम कर रही हैं, ऑर्गेनाइज भी कर रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रही हैं, सारी चीज़ों में लड़कियां कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेड हैं। अब ये चीज एक कंट्यूजन के रूप में लोगों के बीच आएगी। हालांकि इसका ऑपोजिशन हुआ था, बहुत ऑपोजिशन हुआ था, लोकली हुआ था, और कहीं पर भी शायद होते तो होता कि अरे लड़कियां मार्च पास्ट में हिस्सा लेंगी, ये 1940s की बात है। तो यहां पर माँ कह रही हैं कि ये एक टेरेस्ट्रियल स्ट्रगल का एक छोटा भाग, रिप्रेजेंटेटिव, अगर यहां पर हम उस पर विजय पाएंगे तो उसका वो विजय बाहर भी होगी। Thou art putting to the test my power, decision and courage in order to see if I can truly be thy servant. कितनी सुंदर बात है, हम माँ की सेवा करेंगे, माँ की सेवा करेंगे, कहना तो बहुत आसान होता है लेकिन क्या सेवा के लिए योग्य हैं? जब किसी ने पूछा था, माँ मैं चंपक लाल जी जैसा बनना चाहता हूँ, माँ सीरियस हो गई, हाँ सच में पूछो इससे कि कैसे मैंने इसको तैयार किया है, सह सकोगे वो सब? चंपक लाल जी चेयर को थोड़ा सा ऐसे खींचते हैं तो आवाज होती है, मदर टेल्स हिम दिस इज नॉट द वे टू डू इट, पूरा, और वो हर चीज को अमृता पूरा समर्पण भाव से उन चीजों को लेना, सीखते जाना, किसी प्रकार का रिवोल्ट कंप्लेंट कुछ नहीं। उनको पता है जगत जननी माँ जो कर रही हैं मुझे सिखाने के लिए, मेरी प्रगति के लिए कर रही हैं। तो इसीलिए हर किसी के लिए, हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सूची में नाम अपना लिखवा देना चाहिए कि मदर आई वांट टू बी योर सर्वेंट, बहुत बड़ा भाग्य है। लेकिन ये जानना चाहिए कि केवल काम दे देने से ये नहीं कि हम भगवान के सर्वेंट हो गए। एक बार हम एनरोल हो जाते हैं तो एक तैयारी होती है। एक बड़ी सुंदर सी कहानी है कि एक व्यक्ति सीखने गया, वो क्या कहते हैं अपनी फेंसिंग, तलवारबाजी, तो जब वो एनरोल किया तो बड़ा खुश किया, अरे कल से मैं भी तलवारबाज, वो स्वप्न देखने लगा नाइट बनूंगा, लोग कहेंगे अरे वाह कितना बड़ा, इस फेमस स्कूल से इसने तलवार चलाना सीखा है। तो उसको मास्टर ने कहा खाना बनाओ, तो वो खाना बनाने लगा। 2 दिन 3 दिन उसको लगा आप पोशाक आएगी, कुछ मुझे बुलाया जाएगा, रोज़ देखता था खिड़की से जब तलवारबाज तलवार लड़ रहे थे। लेकिन बहुत समय हो गया, मास्टर ने कुछ नहीं कहा। ये तो फिर अपने फेट को रिकनसाइल कर गया कि शायद वास्तव में मुझे खाना ही बनाना है, भूल भी गया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। एक दिन वो जब खाना बना रहा है, मास्टर आके वुडन तलवार से उसको पीछे से जोर से एक झटका देते हैं, क्या बोलते हैं फटका, तो मुड़ के देखता है गुस्से में, हु इज डिस्टर्बिंग मी, तो देखता है कि मास्टर खड़े हैं, मास्टर से तो गुस्सा नहीं कर सकता है, तो स्माइल करता है। फिर कुछ दिन बाद फिर से फटका, फिर गुस्सा आता है, होते ना हम लोग, व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग इन माय वर्क, खत्म हो गई ना बात। माता जी यही तो छोटी छोटी चीजें टेस्ट होती हैं। आश्रम के अंदर ऐसे बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं। माइक जय कहती हैं कि हाँ बड़े बड़े टेस्ट तो सब कॉन्शियस होते हैं, छोटी छोटी चीजों में टेस्ट, अचानक कोई आकर के आपको कुछ कह देगा और आपके अंदर से वो जो है अंदर में वो निकल जाता है, स्पॉन्ट अनगार्डेड मोमेंट है। तो वो सारी चीजें, अब अगर हम कॉन्शियस हो जाएं कि मेरे अंदर से क्रोध निकला, मैं तो यहां पर एक शांति से भरा करुणा से भरा भी उत्तर दे सकता था, मैंने ऐसे क्यों रिएक्ट किया, माँ को ऑफर करें, तो हम उससे पार हो जाएंगे। लेकिन आमतौर पर क्या होता है, हम उसको जस्टिफाई करते हैं क्योंकि हमारे अंदर रेजिस्टेंस होता है। हम ये नहीं देखना चाहते कि हमारे अंदर भी कमजोरी है, तो हम ये कि नेचुरली उसने आकर डिस्टर्ब किया उसके साथ में ऐड कर देते हैं, मैं माता जी का काम कर रहा था। हमारी दा की एक बड़ी सुंदर एक कथा है, बड़ी रोचक है। उनको किसी ने गुस्सा होते नहीं देखा, स्माइल करते थे, सबसे बात करके सबको ऐसे फील करवाते थे कि वो स्पेशल है। तब प्रॉब्लम क्या होती थी, सब लोग आकर के बैठ जाएं। अब एक व्यक्ति था जो हर दिन हर दूसरे दिन आके कुछ ना कुछ कंप्लेंट लेके, और मैनेजर थे उनको सॉल्व करना है। अब वो बेचारे एक दिन उन्होंने देखा वो व्यक्ति आ रहा है फाइल लेके, वो कमरे से जाने लगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कथा है जाचे वेर आर यू, इसे आई एम जस्ट गोइंग आउट, व्हेन विल यू बी बैक, मतलब मैं बैठ के इंतजार करूंगा। तो अमृता ने कहा व्हेन यू विल गो अवे देन आई विल कम। आप देखिए वहां भी अपने कूल को नहीं लूज कर रहे हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर भी इंटैक्ट है। अब कह दिया उसको कि जब तुम चले जाओगे, अभी तुम रोज ही कंप्लेन करते हो, अब मैं तुम्हारी कंप्लेन को, आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई देखो मेरे पास इलाज नहीं है, इसका कोई उत्तर नहीं है इसका, या इसका तो इलाज भगवान ही कर सकते। उन्होंने कहा जब तुम चले जाओगे तो मैं आ जाऊंगा। अब देखिए ये भी एक तरीका है। तो ये बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं छोटे छोटे। तो ये जो टेस्ट की बात कर रहे हैं, वहां ये नहीं कि भगवान आपके साथ एक अनहोनी कर देंगे, कोई बड़ा लॉस हो जाएगा, ये भगवान नहीं करते हैं। भगवान तो आपकी प्रतिक्रियाओं का टेस्ट, भगवान ये नहीं टेस्ट करते हैं कि कोई लॉस इवेंट हो गया, आपके सारे धन चले, ये तो चोरों का काम है, भगवान वो नहीं है। ये तो फोर्सेज हैं संसार में, एडवर्स फोर्सेज, होस्टाइल फोर्सेज, वो ये कृत्य करती हैं। भगवान तो ये देखते हैं कि अच्छा ये हो गया तो इसने कैसे रिएक्ट किया, तो उस पर वो कार्य करते हैं, ये काम नहीं करवाते हैं भगवान की, पर उसके लिए बहुत सारी फोर्सेज हैं। तो यहां माँ कह रही हैं टेस्ट, डिसीशन, करेज, इन ऑर्डर टू सी इफ आई कैन ट्रूली बी दाई सर्वेंट। और इसके तो इतने इतने उदाहरण हैं। द्युमन भाई के वो पूरी धोती लाल हो रही है क्योंकि उनको ब्लीडिंग हो रही है, पता नहीं कितनी बार धोती, 10-10 बार धोती बदल बदल के माता जी की सेवा में जा रहे हैं। स्टेयर केस के से जाने की बजाय माँ बुला रही हैं, सीढ़ी रखी है, फटाक से लगा करके चढ़ करके जा रहे हैं। क्यों? कहते माँ की सेवा सर्वोपरि, मेरी प्रॉब्लम ब्लीडिंग हो रही है, बीमारी है, सब ऐसे। ये लोग जो हमसे पहले गए ना, इन्होंने ये रास्ता ऐसे दिखाया है, ऐसे नहीं कि अरे ये हो गया अब क्या होगा, मेरा घुटना दर्द हो रहा है अब कोई इसका परमानेंट इलाज कर दे, ऐसे नहीं। ये लोग जो गए हैं, हाउ दे हैव गॉन इन देयर सर्विस। इफ द रिजल्ट ऑफ द बैटल शोज दैट आई एम वर्दी ऑफ बीइंग द इंटरमीडियरी ऑफ द रीजनरेटिंग एक्शन, भगवान ने देखा कि भाई वर्दी है तो क्या करेंगे, रिवार्ड देंगे आपको, कोई पोजिशन देंगे नहीं। इंटरेस्टिंग है, Thou wilt extend the field of the action. कि अगर वो देखेंगे कि अगर आप वर्दी हैं तो ये नहीं करते हैं भगवान की अच्छा अब आप उसमें तो बैठ के आप बैठ गए, तो जब लोग ये सोचते हैं कि भगवान ने एक चेयर मिल गई। देखिए हनुमान जो भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, उनको क्या पोजीशन मिली थी, हेड मैनेजर, डायरेक्टर ऑफ श्री राम सेना, सेनापति भी नहीं थे। कैन यू इमेजिन, ही वॉज नॉट इवन सेनापति, सेनापति तो सुग्रीव थे। लेकिन हनुमान के बिना राम कहते हैं तुम्हारे बिना मेरे सारे काम अधूरे हैं, जब भी कोई समस्या है तो हनुमान को बुला रहे हैं। तो वैसा हमारी हमारी जो एस्पिरेशन है वैसी होनी चाहिए। भगवान की सेवा कुर्सी पर बैठ के फाइल पर डिसीजन लेके नहीं होती है, भगवान की सेवा तो ऐसे होती है कि जहां जब जैसे भी हर क्षण जो भी कार्य मिले भगवान का कार्य समझ के, जिसे एंथुजियाज्म रहे, जॉय रहे, सेवा का भाव रहे, तो यहां पर कहते हैं कि जैसे जैसे अगर भगवान समझते हैं कि हम वर्दी हैं, वैसे वैसे वो हमको और काम देने लगते हैं. एंड इफ आई ऑलवेज शो माई सेल्फ टू बी एट द हाइट ऑफ व्हाट दाउ एक्सपेक्टेस्ट फ्रॉम मी, ए डे विल कम ओ लॉर्ड व्हेन दाउ विल्ट बी अपॉन द अर्थ एंड द होल अर्थ विल राइज अगेंस्ट दी. अब भगवान तो धरती पर हैं, ये वो कह चुकी हैं, पर यहां किस सेंस में कह रही हैं कि भगवान का साम्राज्य स्थापित हो गया साक्षात वो, नॉट एज ए शेरविन तो अवतार हैं, वो कह चुके हैं ही होम वी सॉ यस्टरडे इज हियर अपॉन अर्थ, किंतु हर चीज पर हर व्यक्ति पर भगवान का राज्य स्थापित होगा. लेकिन अब आगे मैं माँ कह रही हैं एंड द होल अर्थ विल राइज अगेंस्ट दी. देखिए आप जब भी भगवान आए हैं ये बात हुई है, अभी भी आप देखेंगे कि आप शेरविंद के बारे में जब बात करेंगे तो मैं उस ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ जो टर्न्ड है, बहुत ब्लेस्ड हैं वो लोग, ग्रेस है, कहीं ना कहीं इफ्स बट्स डाउट्स प्रारंभ हो जाते हैं कई लोगों में. लेकिन माँ आगे कहती हैं बट दाउ विल टेक द अर्थ इन दाय आर्म्स एंड इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड. अब ये स्ट्रेटजी चेंज हो गई है, अब ये मार काट वाली स्ट्रेटजी नहीं है. क्योंकि क्या होता है ना, आप मारते हो, रावण मार दिया भगवान ने, कंस मार दिया, ये तो होता रहा. अब एक तो प्रॉब्लम ये है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण के आने के साथ जो दो असुरों का हिसाब किताब चला था पूरा हो गया, वो तो तीन अवतारों ने कंप्लीट कर दिया वो कोर्स, मेडिसिन का कोर्स उनका जो था जय विजय का. हम अभी भी यही सोचते हैं असुर आएंगे मार डालेंगे. माँ कहती हैं हिटलर और मुसोलिनी के मरने से कुछ नहीं होता है क्योंकि वो प्रवृत्ति तो है, वो दूसरों के अंदर आएगी. कितने लोगों के अंदर ये प्रवृत्ति है, तालिबानी केवल वहां नहीं बैठा है, यहां भी बैठा है. लड़की को हम पढ़ने नहीं देंगे, लड़की को तो घूंघट, लड़की को घर के अंदर, लड़की को ऐसे, लड़की को ऐसे. वैसे माता जी के डिवोटी हैं तो ये तो वही तालिबानी है, और उसी प्रकार से वही हिटलर है जो चाहता है कि पूरा संसार मेरी बात को माने. अब पूरा संसार तो नहीं कह सकता व्यक्ति, घर में सब मेरी बात माने, मेरे अनुसार चले. हिटलर आ गया ना छोटा सा. तो ये जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति नहीं जाती मनुष्य के अंदर, और उस प्रवृत्ति को आप केवल रूपांतरित कर सकते हो, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज माता जी बताती है, यही रूपांतरण का योग है. और रूपांतरण का मतलब है वो कहीं ना कहीं किसी सत्य से पोषित हो रही है. फॉल्सहुड क्या है, ट्रुथ की ट्विस्टिंग है, उसकी भी पावर ट्रुथ से आ रही है. जब ये कहा जाता है मान लीजिए कि पूरे संसार में भगवान का राज्य होना चाहिए, वो बिल्कुल निश्चित रूप से ट्विस्ट कहां आती है, केवल उस भगवान का जिसको मैं मानता हूं. उसके बाद एक और ट्विस्ट आ जाती है, देखिए ट्विस्ट में ट्विस्ट, ना केवल जिसको मैं मानता हूं, जो उसको नहीं मानते हैं उनको जीने का अधिकार नहीं है. तो आपने क्या किया, एक बहुत सत्य को फॉल्सहुड में कन्वर्ट कर दिया. अब इसी को अगर हम खोल दें गांठें इसकी, हाँ भाई हम मानते हैं भगवान का राज्य होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको बाहर किसी को नहीं मारना है, अपने ही अंदर अहंकार को मारना है. अगर ये समझ आ जाए तो सुंदर हो जाएगी पृथ्वी, लेकिन वो समझ नहीं आती. तो भगवान क्या कर रहे हैं, एम्ब्रेस कर रहे हैं, दाउ विल टेक द अर्थ इन दाई आर्म्स एंड इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड. अब ये बड़ी ट्रिकी बात है, भगवान जब अपनी बाहों में लेते हैं तो दो चीजें होती हैं, आपकी ईगो तो क्रश होगी, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बी है नहीं, एक ही ऑप्शन है, ईगो विल बी क्रश्ड, ऑप्शन वन. ऑप्शन टू, ईगो विल बी क्रश्ड, फिर कोई तो ऑप्शन होगा. हाँ ऑप्शन है, आप लड़ते लड़ते ईगो को क्रश करवाओगे या खुशी खुशी समर्पण करके ईगो को क्रश करवाओगे. तो एक है विद्रोह का रास्ता भगवान के प्रति रिवोल्ट का, आपकी ईगो विल बी क्रश्ड और आपके अंदर जो शुद्ध सत है वो बाहर निकलेगा. और दूसरा है कि भाई प्रेम में आप स्वयं को दे दोगे कि भगवान ये सब जो मैं पाले बैठा था कि मैं यह हूं, मैं वह हूं, मैं वह बनूं जो तू चाहता है. तो वहां पे ये पहली प्रार्थना. दूसरी प्रार्थना भी अब ये सब जुड़ी हुई प्रार्थना है जनवरी 18, 1915 की। माँ ये कह रही हैं, बट इफ दाउ कैंस्ट मेक द इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट हाउ कैन वन डाउट दैट द वर्क विल बी अकम्प्लिश्ड। तो भगवान ने बीड़ा उठाया इसका कि वो इंस्ट्रूमेंट को परफेक्ट बनाएंगे, हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन समर्पण करना, सत्यनिष्ठा, अभीप्सा, एंड्योरेंस, ये हमारा काम है। फेथ, वी मस्ट चेज अवे वेरी फार ऑल द ईविल शेडोज दैट सजेस्ट द कंट्ररी। क्या है ईविल शेडोज कि लिखा है माँ श्री अरविंद ने, हबे कि ना हबे, होगा कि नहीं होगा, कौन जाने कब होगा, सुना, ये है ईविल। ये ऐसे एंटर करता है साइड से, एक छोटे बॉम्ब के रूप में बढ़ता चला जाता है। माँ कहती एनीथिंग दैट सजेस्ट टू द कॉन्ट्रेरी। इसलिए लोग कहती बार बार द सर्टिट्यूड होना चाहिए कि जो काम श्री अरविंद ने अपने हाथ में लिया है वो होगा ही होगा। और कोई पूछे इस सर्टिट्यूड का आधार क्या है, तो बड़ी सिंपल सी एक बात हम कह सकते हैं, क्योंकि श्री अरविंद माता जी ने कहा है। आप सोचिए, कई बार लोग इस बात को कहते हैं, लॉजिकली भी समझाया जा सकता है, वो एक अलग बात है कि लक्षण क्या है सुपर माइंड के इत्यादि। पर एक मैंने एक आध बार पूछा है किसी से, मैंने कहा यदि मैं ये कहूं कि श्री अरविंद माता जी ने कहा है इसलिए ऐसा होगा, तो तुम क्या कहोगे? अब लोग रुक जाते हैं। मैंने कहा तुम क्या कहोगे कि वो गलत कह रहे हैं, कि वो झूठ कह रहे हैं? तो लोगों की सांस रुक जाती है, ऐसे कैसे हम बोल सकते हैं? अब बोल तुम वही रहे हो, घुमा फिरा के बोल रहे हो। डाउट का अर्थ यही है कि वो जो कह रहे हैं वो सही नहीं कह रहे हैं। यदि उन्होंने कहा है और वो सत्य चेतना में उठ चुके हैं, ये आप जानते हो, जिन्होंने इतनी तपस्या, मतलब माँ श्री अरविंद की त्याग, तपस्या और आत्मानुदान, इसकी कोई पैरल नहीं है पूरी हिस्ट्री में, स्पिरिचुअल हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, और इसको मैं कन्विंसिंगली और लॉजिकली वन कैन सी इट। आप ये कह रहे हो कि वो उनका कहानी और कोई लॉजिक से बताओ, तो वैसे भी हमारे यहाँ जो उच्चतम प्रमाण माना गया है वो है आप्त वाक्य प्रमाण। ये भारतवर्ष की अनूठी बात है। रैशनल डिस्कोर्स का एक है स्थान, अनुमान, उपमान इत्यादि हैं, लेकिन आप्त वाक्य को अल्टीमेट प्रमाण, दी वर्ड ऑफ द ऋषि, श्री अरविंद कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं, तो ये सत्य है। और तब आप उस पर बढ़ते हो, नेचुरली वो अभी रियलाइज नहीं है आपकी चेतना में। तो यहां पर माँ कह रही हैं कि हमको ईविल शैडो, डाउट वहां से आता है, छाया पड़ती है, और भगवान को, माता सीता के पवित्रता पर वो डाउट ला देती है, यह ईविल शैडो। एंड फुल ऑफ एन अनशेकेबल कॉन्फिडेंस इन दाई इनफिनिट मर्सी। देखिए मर्सी की बात, कृपा की बात नहीं कर रहे हैं। मर्सी क्या होती है? पता है तुम पतित हो, लेकिन आप पतित पावन हो। ये होता है ना कि अगर हम पतित भी हैं तो आप तो पतित पावन हो, आपके स्पर्श से क्या नहीं बदल सकता है। कभी कभी शुरू शुरू में जब मैं यहाँ आया था तो जोकिंगली हम लोग, कुछ लोग बात करते थे, मैंने कहा था ये पतित पावन उद्धारण संस्थान है। और कहाँ जाएगा व्यक्ति? तो पतित पावन, इसका अर्थ यही है कि कितना भी आप गिरे हो, भगवान के स्पर्श से सब कुछ सुंदर हो सकता है। तो इसलिए माँ इन्फिनिट मर्सी की बात कर रही है। कृपा होती करुणा, मर्सी, दया का एक सर्वोच्च, दया क्या आप जानते हो, ये नहीं कर सकता है, परंतु भगवान इतने दयालु हैं कि उसको भी वो अपने हाथ में लेकर के बदल देते हैं। आई एड्रेस टू दी दिस प्रेयर, अब माँ क्या प्रार्थना कर रही हैं? और सच में इसको हम सुने तो हम लोग को लगता है हम सच में कितने दूर हैं उस चेतना से। माँ कह रही हैं, ट्रांसफॉर्म दाई एनिमीज इंटू फ्रेंड्स। हम लोग अपने छोटे छोटे एनिमी, छोटे नारायण जी बताते थे यही बात, कहते हम लोग इतने बुद्धू थे, माता जी हैं, हम उनसे कुछ भी कह सकते थे, पर हम क्या उनसे कहते थे, वो जो है ना प्रोफेसर हमारे साथ बहुत गलत किया है, या तो उसका ट्रांसफर करा दो या हमारा करा दो। और कहते थे हो जाता था, हम इसी को कृपा समझते थे। He said this once. कहते हम कुछ भी उनको कह सकते थे लेकिन ये क्या प्रार्थना करते थे. तो ट्रांसफॉर्म दाई एनिमीज इंटू फ्रेंड्स, चेंज द डार्कनेस इंटू लाइट. अब इस पर तो एक स्टोरी है जो मैं, बड़ी कंक्रीट स्टोरी है. जब पटियाला में हम थे और एक्चुअली उस समय टेररिज्म अपने पीक पर था, मॉर्निंग से रात को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहता था. और खैर हम लोग जाते थे सेंटर में काम करने, 9 बजे आते थे, वो एक अलग स्टोरी है कैसे भी करके डेली. लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या हुई कि जब श्री अरविंद का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले थे तो उनके लिए श्री अरविंद का बर्थडे का इशू नहीं है, बर्थडे ये भारत स्वतंत्रता है यू कांट. उस समय जो खालिस्तानी शुरू हो गए थे ये सब, पोस्ट गोल्डन टेम्पल पोस्ट बिंडर वाले की बात कर रहा हूँ मैं, 86 की बात कर रहा हूँ. तो फिर वो थ्रेटन करने एक लड़का आया, हमारे घर में आया और तब मैं ड्यूटी पर था. जब मैं आया उसने कहा देखो आप ये मत करना, नहीं तो जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे आपकी प्रॉब्लम है, देख लेना. तो अब उस समय क्या होता है, कभी कभी आप आवेश में आते हो. तो मैंने कहा जो आप करना है कहना है, हो गया, हम महाकाली की संतान है, हम डरते नहीं किसी से, हम वो करेंगे जो हम करना चाहते हैं, आप वो करो जो आप करना चाहते हैं. अब ये एक फिल्मी डायलॉग, उस समय कोई रिसोर्सेज नहीं थे, बोल दिया चला गया. कहा ठीक है फिर. तो सब लोगों ने कहा पुलिस बुला लो, ये बुला लो. मैंने कहा जिसके भरोसे पर हमें आज कुछ नहीं बुलाना है. तो हम लोगों ने प्ले किए रखा था, तो प्ले था वो माँ की जो वर्च्यूज़ है उस पर 72 के म्यूज़िक से स्टार्ट किया. ये लोग 6 लोग आए, तो ये तो मैं पहचान गया और इसके साथ और भी 5 लोग थे, लोग जानते थे इनको कि आ गए. तो सब आके इधर उधर खुसर फुसर हो रही है, वो आ गए हैं. आने तो तुम लोग माँ श्री अरविंद पर कॉन्सेंट्रेट करो. 1 घंटे 1.5 घंटे प्रोग्राम चला होगा, वो बीच में थोड़ी देर है 15-20 मिनट बाद फिर चले गए, अपने आप चले गए. बाद में ये लड़का जो थ्रेटन करने आया था, इसकी चिट्ठी आती है मुझे जब मैं पूना में जाता हूँ और कहता है मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं तो अब श्री अरविंद का भक्त बन गया हूँ, बाबा जी का बाबा जी. उसके साथ ऐसी कुछ घटनाएं हुई, वो पूरा डिवोटी बन गया. मतलब ऐसा डिवोटी बना कि वो हर चीजें मैं करूंगा ना, मैं करूंगा जी, मैं करूंगा जी. हो तो ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है. इसी को बोलते हैं कन्वर्शन ऑफ द असुरा. और असुर जब कन्वर्ट हो जाता है तो इंस्ट्रूमेंट बन जाता है. अब वो उछल उछल के मैं करूंगा, कोई भी काम है मैं करूंगा. उसके रिसोर्सेज हैं, लोगों को जानता है, हर तरह के लोगों को. तो ये जो है हमारे अंदर जो एनिमीज, कौन है भगवान की एनिमीज, ये भी किसी ने मां से पूछा. कहा भगवान तो सब कुछ है. तो एक अगर आप वेदांतिक दृष्टि से तो कोई एनिमी नहीं है, लेकिन मैनिफेस्टेशन में वह जो भगवान ने पास्ट में अभिव्यक्त किया था उसके आधार पर जब हम भविष्य का रास्ता रोकते हैं तो वो एनिमीज होते हैं. तो यहां एनिमीज से ये अर्थ है कि वे जो भगवान के मैनिफेस्टेशन में, आगे के मैनिफेस्टेशन में जो बाधा कर रहे हैं, दे आर द एनिमीज. तो दे इंटू फ्रेंड्स इन दिस हीरोइक एंड इमेंस स्ट्रगल, इन दिस सबलाइम स्ट्रगल ऑफ लव अगेंस्ट हेट्रेड, ऑफ जस्टिस अगेंस्ट इनजस्टिस, ऑफ ओबीडियंस टू दाई सुप्रीम लॉ अगेंस्ट रिवोल्ट, मे आई लिटिल बाई लिटिल मेक ह्यूमैनिटी वर्दी ऑफ ए स्टिल मोर सबलाइम पीस, इन विच ऑल इंटरनल डिसेंशंस हैविंग सीज्ड द होल एफर्ट ऑफ मैन मे अटेन, मे यूनाइट to attain to a more and more perfect and integral realization of thy divine will and thy progressive ideal. ये चीज हम माँ की कई जगहों पर, इसमें भी एक पहले प्रार्थना थी. माँ कहती हैं 2 प्रकार की फोर्सेस काम कर रही हैं इस समय संसार में, एंड बोथ आर अगेंस्ट thy law. आपस में लड़ रही हैं. एक कह रही है झंडा लेके कि हम लाएंगे सतयुग, दूसरी कह रही नहीं सतयुग तो हमारा वाला सतयुग तो आ चुका है 1500 साल पहले, तुम तो उसके मार्ग में हो. ये कह रहा है नहीं अब वो तुम्हारा जो भी सतयुग रहा हो तुम तो अब घोर कलयुगी काम कर रहे हो, हम तुमको हटाएंगे. ये दोनों फोर्सेस काम कर रही हैं. माँ कह रही हैं बोथ आर अगेंस्ट थाई लॉ. तो इसीलिए माँ कई जगहों पर कहती हैं एक और डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस काम कर रही हैं संसार में. उनका अपना काम है, वो तोड़ेंगी बहुत कुछ, इधर से भी टूटेगा उधर से भी टूटेगा, ये उनका काम है. कह रही दूसरी ओर कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस ऑफ द न्यू क्रिएशन. और माँ कहती बहुत कम है जिनके अंदर वो विजन है ऑफ द कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस, उनको केवल कंस्ट्रक्शन के उसमें लगना चाहिए. क्योंकि जब टूट जाएगा बहुत कुछ टूटेगा, अभी तो शुरुआत हुई है, और आपके अंदर कुछ है ही नहीं कि यहां पे आप या तो लेमेंट करोगे अरे टूट गया मेरा सुंदर सपना, लेकिन वहां पर क्या कंस्ट्रक्ट होना है, आपके अंदर कोई मन में कोई भाव नहीं है, कोई जानते नहीं, आप लेमेंट कर रहे हो। तो हम लोगों को माँ के न्यू क्रिएशन का अंग बनना है, अंश बनना है। मतलब ये कि वी हैव टू हेसन द स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, और जितना हम हेसन करेंगे, जितना हम उस ओर अग्रसर होंगे, उतना संसार में हम जो भी लाभ होना है उससे ही होगा। इसीलिए कई बार लोग बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज की ओर देख के आशा भी उससे करते हैं और निराश भी वहीं से होते हैं। पर ये किसने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी और गवर्नमेंट संसार में एक क्रांति लाएंगी? दे आर नॉट कैपेबल, बाई देयर नेचर दे आर नॉट कैपेबल। वो तो अपना कैलकुलेशन जोड़ तोड़ घटाव करती हैं, कुछ थोड़ी बेटर हैं, कुछ वर्स हैं, यही डिफरेंस है। लेकिन उत्क्रांति जो हो रही है, स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन, वो उनके अंदर हो रही है जो संसार की सब सीमाओं को देख के, ये नहीं कि घबराए हैं, डरे हुए हैं, वो चाहते हैं कि नहीं, एक नई सृष्टि होनी चाहिए, वो पुरानी वाली नहीं। पुरानी सृष्टि ओवर माइंड क्रिएशन तक की सृष्टि को माने डिसॉल्व, सैंक्शन नहीं दिया है श्री अरविंद ने। एक जगह कहते हैं आई कैन नॉट गिव माई सैंक्शन टू द ओल्ड फियास्को। ओल्ड फियास्को क्या है? वही पुराना रीति रिवाज, तौर तरीका, इवन भगवान से रिलेट करने का, दूर करके भगवान वहां हैं, उनकी हम ऐसे पूजा अर्चना, जिनको करना है करने दो, हमारे सनातन धर्म में कोई किसी को रोक टोक नहीं है। लेकिन अब एक नई चीज प्रकट हो रही है, वे कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग जो उस दिशा में खुल गए हैं भगवान की कृपा से, माँ की कृपा से, उनको अब पूरी तरह उस दिशा में चलते जाना चाहिए। प्रिसाइडली बिकॉज दे आर फ्यू इन नंबर्स। श्री अरविंद कहते भी हैं कि नथिंग डिपेंड्स कि हमारे बहुत ज़्यादा हों, मास मूवमेंट हो, इस दिशा में हमको नहीं जाना है, वो डाइल्यूट करती है चीज़ों को। लेकिन जो कुछ हैं, श्री अरविंद ने तो केवल 100 लोगों की बात की, वे पूरी तरह अपने आप को आत्म उत्सर्ग के द्वारा इस कार्य में अपने आप को दे दें। लास्ट की प्रेयर हम लोग केवल टच करेंगे। ये फरवरी 15 है, 1915, इसके एक हफ्ते बाद माँ चली जाएंगी। फरवरी 22 को वो यहाँ से चली जाती हैं, 1915। तो उसके पहले की ये प्रार्थना है। ओ लॉर्ड ऑफ ट्रूथ, थ्राइस हैव आई इम्प्लोर्ड थाई मैनिफेस्टेशन, इनवोकिंग दी विद डीप फर्वर। तो थ्राइस माइंड के लिए, वाइटल के लिए, फिजिकल के लिए। देन एज ऑलवेज द होल बीइंग मेड इट्स टोटल सबमिशन। एट दैट मोमेंट द कॉन्शियसनेस परसीव्ड द इंडिविजुअल बीइंग, मेंटल, वाइटल एंड फिजिकल, कवर्ड ऑल ओवर विद डस्ट, एंड दिस बीइंग ले प्रोस्ट्रेट बिफोर दी। देखिए पूरी तरह माँ ने कहा है कि ये तीन जेस्चर होते हैं जो एकम्पनी करते हैं तीन साइकोलॉजिकल स्टेट्स। वन ऑफ देम इज पूरी तरह अपने को क्या कहें, साष्टांग दंडवत प्रणाम। और ये जेस्चर क्या है? कंप्लीटली मैं तुम्हारा हूँ, लेट दाई विल बी डन, ये उसका जेस्चर है पूरी तरह। अब ये नहीं कि वो केवल हम जेस्चर करेंगे, मन में भाव नहीं होगा ये वाला इस, लेकिन ये जेस्चर उसको एकम्पनी करता है। कभी कभी मन में ये जेस्चर आता है। अब शायद कई लोग हैं, ये अगर आप फिजिकली करेंगे तो दूसरे अन्यत्र ले सकते हैं, लेकिन ये जेस्चर है अंदर का कि पूरी तरह माँ के चरणों में। और वो जो है वो साष्टांग दंडवत प्रणाम, प्रोस्ट्रेट एट दाई फीट, सी ले प्रोस्ट्रेट, इसको हमारी भाषा में क्या है, साष्टांग दंडवत प्रणाम। तो क्या होता है, अब शरीर की धूल अब उस धूल के साथ मिल गई। ये भाव क्या है, मैं तुम्हारे चरणों की धूल हूं और यह धूल आपके ऊपर अर्पित है, ये भाव है उसके अंदर। सब कुछ तुम्हारी तरह तरफ शेष निशेष। अब माँ बताती हैं कुछ बड़ा सुंदर होता है। इट्स फोरहेड टचिंग द अर्थ, डस्ट इन द डस्ट, एंड इट क्राइड टू दी। ओ लॉर्ड, दिस बीइंग मेड ऑफ डस्ट प्रोस्ट्रेट्स इटसेल्फ बिफोर दी, प्रेइंग टू बी कंज्यूम्ड विद द फायर ऑफ द ट्रूथ, दैट इट मे हैंस फोर्थ मैनिफेस्ट ओनली दी। कितनी सुंदर बात है। मिट्टी हो, इस मिट्टी से कुछ तो गढ़ दो ताकि केवल आप इससे अभिव्यक्त हो. दिस डस्ट प्रोस्ट्रेट्स एंड प्रेज. क्या प्रे कर रही है? प्रार्थना टू बी कंज्यूम्ड विद द फायर ऑफ द ट्रूथ. कुछ ऐसा नहीं छोड़ देना भगवान, सत्य की अग्नि में पूरा का पूरा मैं डाल रही हूं स्वयं को, ताकि अब से सब कुछ तुम्हें ही अभिव्यक्त करे. देन दाउ सेड्स टू इट, अराइज दाउ आर्ट प्योर ऑफ ऑल दैट इज डस्ट. वर्शिप को, पूजा का रियल अगर सार समझना है तो ये है. सावित्री में एक लाइन है कि फॉर द डेटी लिफ्ट्स द वर्शिपर एट द फीट. एग्जैक्ट लाइन नहीं पर यह है, और वो उनको अपने गले से लगाते हैं. ये देखिए कैसा भाव है. जगह जगह हम अपने शास्त्रों में पढ़ेंगे कि वो वर्शिपर ने पूरी तरह अपने को भगवान के चरणों में डाल दिया. अब नेक्स्ट जेस्चर क्या होता है? भगवान उसको उठाते हैं और अपने गले से लगाते हैं. अब आप सोचिए, आपने चरणों में नहीं डाला, आप सीधा जाके हाथ फैला के जा रहे हो. टैगोर ने ऐसे ही किया था, अपना वो हाथ फैला के आर्म्स श्री अरविंद को एम्ब्रेस करने के लिए जा रहे हैं. और श्री अरविंद क्या करते हैं? श्री अरविंद नमस्ते करके स्टॉप से. यही अंतर है. आज कोई बता रहा था कि वो माता जी के चरणों में प्रणाम कर रहा था, तो माँ फ्रेंच में कहती हैं, यू कैन कीप योर हेड ऑन माई लैप. अब मैं तो इतना भावी और हो गया, मैंने कहा आपका माता ही टच कर लो. मैं कैप पहने थे, ना कैप उतारो मेरे को आपका, आई वॉन्ट टू टच योर फोरहेड. अब देखो माँ कहती यू कैन कीप योर हेड इन माई लैप. तो ये होता है, ये नेक्स्ट स्टेप होता है. हम चरणों में पूरी तरह डाल देते हैं अपने आप को भगवान के. आई एम बट डस्ट ऑफ थाई फीट. एक याद आ रही है, आई कांट हेल्प, दो मिनट लगेंगे. एक बड़ी सुंदर एक उर्दू की गजल है, वन ऑफ माई फेवरेट, अबिदा परवीन की गाई हुई, जी चाहे तो शीशा बन जा, जी चाहे पैमाना. अब ये लंबी है तो आई एम नॉट गोइंग टू यू नो, पर उसमें एक लाइन आती है, रूह की आंख का सुरमा बन जा. सुरमा क्या है? काला होता है, लेकिन वो क्या करता है? आंख के सुंदरता को बढ़ाता है. तो मैं काला हूं, माने मेरे अंदर सारे डार्कनेस है, दुर्गुण है, पर आपकी आंख का सुरमा तो बन सकता हूं. खा के दरे जानाना बन जा. अब यहां पर हो रहा है कि भगवान के बिलवेड के चरणों की धूल बन जा. प्रे कर रहा है वो, अंत में सब कुछ प्रे करने के बाद वो लास्ट में प्रे करता है, खा के दरे जानाना बन जा. और तब वो क्या होता है? वो घुल मिल जाता है लॉर्ड में. बड़ी सुंदर है. और यही भाव है, फायर सीख जहीन के दिल से जलना, काहे को हर शम्मा पे जलना, अपनी आग में जो जल जाए तू वैसा परवाना बन जा. यहां भी मां कह रही फायर ऑफ ट्रूथ, मैंने स्वयं को आप में डाल दिया है पूरी तरह. ये डस्ट है, धूल है, पर इस धूल को अगर आप स्वीकार करो तो आप माथे का चंदन बना लो, या आपके पांव के नीचे पड़ी रहूं, जैसे भी रहूं, बस आप जो कुछ भी हो मेरे जीवन में सब आपकी अभिव्यक्ति हो, कोई और डिमांड नहीं है. ये है परफेक्ट सरेंडर. तो हम लोगों ने पिछली बार इसकी बात सुनी थी, रिजुता वाइडनेस, अब आया समर्पण. सभी में एक्सेप्टेंस, सब कुछ ये समर्पण का भाव है. और ये फाइनल सरेंडर, लेट थाई विल बी डन. एंड सडनली इन ए स्ट्रोक ऑल द डस्ट सैंक फ्रॉम इट लाइक ए क्लोक दैट फॉल्स ऑन द अर्थ. हमको समर्पण नहीं आता, हम अपनी बुराइयों को पकड़े रहते. अरे हम तो इतने अनफिट हैं, अरे हम तो इतने बेकार हैं, अरे हमारे अंतर तो ये, अरे ठीक है, हैं हैं. कृपा माँ एक जगह कहती हैं, यू नो व्हाई यू आर हिप्नोटाइज्ड विद योर डिफिकल्टीज, बिकॉज यू डोंट हैव फेथ इन द ग्रेस. माँ की वाणी है ये. जो भी है, जैसे भी है, आपके चरणों में है, तो फिर क्या अनुभव होता है? ऑल द डस्ट सैंक फ्रॉम इट लाइक ए क्लोक दैट फॉल्स ऑन द अर्थ. कुछ भी नहीं है ये. जब गिरता है तो लगता है ये, इसको हम पकड़े थे चिपक के कि ये मैं हूं. and the being appeared erect, always as substantial, but resplendent with a dazzling light. सबके अंदर एक हीरा छिपा है, माँ ने इसको ऐसे बताया है. सबके अंदर एक इनगट ऑफ गोल्ड है, लेकिन वह धूल से लुपटा हुआ है. हम धूल को देख देख के हर चीज को डिस्कार्ड करते रहते हैं. भगवान क्या करते हैं, हाथों में लेके धूल हटाते हैं. हीरा तो है, इरेक्ट डैजलिंग स्प्लेंडर है वो हीरा. यही करते हैं वो, हीरों की खेती करते हैं. हम लोग उसको मिट्टी समझ के, मिट्टी के बोल संसार में बेचते रहते हैं अपने आप को, मिट्टी के मोल, प्राइस टैग लगा के, जो शुरू में बात हो रही थी. और भगवान उसको हीरा हीरा करके वो अपने पास, बाद में उसी से वो उनके हीरे की जो भी जड़ लें अपने लिए. सो ये प्रोसेस है रूपांतरण की, जिसमें सरेंडर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. इसको हम लोग पढ़ के फिर रुक जाएंगे. इट क्राइड टू दी, ये लास्ट मूवमेंट है. कवर्ड ऑल ओवर विद डस्ट एंड दिस बीइंग ले प्रोस्ट्रेट बिफोर दी, इट्स फोरहेड टचिंग द अर्थ, डस्ट इन द डस्ट. And it cried to thee, O Lord, this being made of dust prostrates itself before thee, praying to be consumed with the fire of the truth, that it may henceforth manifest only thee. Then thou sayest to it, Arise, thou art pure of all that is dust. And suddenly in a stroke all the dust sank from it like a cloak that falls on the earth, and the being appeared erect, always as substantial, but resplendent with a dazzling light. Substantial, there is a truth which is hidden. Truth substance ki koi cheez hai jo hamare andar, ye mithya nahi hai, illusion nahi hai. बट विद रेस्प्लेंडेंट लाइट, क्योंकि उसके अंदर अब भगवान का प्रकाश स्थापित हो गया है. जय मां. अगली बार हम लोग बृहस्पतिवार को मिलेंगे, क्योंकि संडे को एक और कोई प्रोग्राम है. थर्सडे को मिलेंगे. जय मां.